नियम सार कारण कार्य नियम लेक्चर नंबर 86। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वर्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूरम्, नमिऊणजिनम् वीरम् अनन्तवर्णानदं सनसहावम्। उच्छामि नियमसारम् केवली सुद केवली भणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभ मलधारी देव जी की जो टीका है तात्पर्य वृत्ति, और इन दोनों को मिलकर उस पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रवचन दिए हुए हैं, जो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से अभी हमारे हाथ में है। ये द्वितीय पुस्तक, दूसरी पुस्तक के 74 पृष्ठ पर हम आगे 74 नया पैराग्राफ, तीसरी लाइन है ना, ऊपर से तीसरी लाइन जो नया पैराग्राफ है वहां से हम शुरू करते हैं। विचारवंत डाया पुरुषों ने गोचर छेटले गम्य छे, यानी विचारवंत डाया पुरुषों ने इनो अनुभव आवे छे एवो छे। एवा आत्मामा, आ व्याख्या पूरी थई। एवा आत्मामा तू रुचि केम करतो नथी, एटले एम केम कहूं कि कोई कर्म तने नड़े छे माटे रुचि करतो नथी एम नथी, एने तुझे कोई ऑब्स्टेकल नहीं, क्यों नहीं कर रहा, कि कर्म आड़ा आता है तो नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात ही नहीं उसकी। ते रुचि बीजे करी छे, ये दोष तेरा है, कोई कर्म का दोष नहीं है, निमित्त नहीं मिला इसलिए अटक गया ऐसा नहीं है, कोई व्रतादि नहीं किए इसलिए अटक गया ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी कोई कंडीशन ही नहीं है। कंडीशन क्या है, जो खरेखर आत्मा जो है जिसको कहा यहाँ पर, तो उसकी दृष्टि करनी है, उसकी रुचि मुख्य करनी है, रुचि से उसकी दृष्टि भी करेगा। तो रुचि बीजे करी छे, ऐसा पूछते हैं ना, अरे पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा कर रहा है, तुझे रुचि नहीं है छोड़, जहाँ रुचि है वहाँ बरोबर पुरुषार्थ चल रहा है, होता है ना ऐसा, कैसे भी करके कर दिखाऊंगा, क्यों नहीं होता, बिल्कुल उसमें कितने भी अड़चन आ गए ऑब्स्टेकल, फिर भी कुछ ना कुछ करके उसी के बारे में सोच कर रास्ता निकाल लेता है। तो कहते ते रुचि बीजे करी छे पुण्यना परिणाम मां, देखो किसमें किसमें रुचि हो सकती है, खाली बच्चों में और पैसे में नहीं कहा, पुण्य के परिणाम में, पाप के परिणाम में, पापना परिणाम मां, धूल मां, धूल मां एटले पैसा धन संपत्ति, उसमें ने भोग मां रुचि करी छे, क्योंकि हरेक की रुचि अलग अलग जगह होगी, तो इसमें इसमें रुचि करके रखी उसने। एवा आत्मा मां तू रुचि केम करतो नथी, बुद्धिम किम न करोशी, वांछसी सुखम त्वम चेने। तू नो अर्थ जो भाई, ते रुचि नो तूज करता छो, क्या कहा, कोई रुचि बना दे अपनी ऐसा होगा क्या, तुम हमारी उसके प्रति श्रद्धा बना दो, हमको आत्मा की रुचि बना दो, तो कहते कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला है, ये स्वयं ही रुचि करे तो होगा। उन्धी रुचि नो करता तू छो, जो अन्यत्र रुचि लगी है वो किसने कराई तुझे, स्वयं ने ही की है, तो यहाँ भी तू ही रुचि करेगा तो होगा। मोक्ष ने कुछ कहा बीच में, उत्तर कहते हैं उभी करी छे, यानी अन्यत्र रुचि खड़ी कर दी उसने। पुण्य पाप ना विकल्पो हूँ करूँ, अने हे मारू कार्य, आनु आ करू, धूल करू, देशनु करू, गामनु करू, धूले करतो नथी सांभळने, क्या कहा, किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। परद्रव्य की जड़ की क्रिया ना शरीर की क्रिया कर सकता है, ना बोलने की क्रिया कर सकता है, देश की, बच्चों की, क्या किसी की भी कुछ नहीं कर सकता है। या क्या कहा, यहाँ लिखा ना, पुण्य पाप ना विकल्प हूँ करूँ, विकल्प का कर्ता बनकर बैठा है। ए मारु कार्य आनु आ करू, वो तो वाक्य पूरा हुआ, फिर आनु आ करू, धूल करू, देश नु यानी बच्चों को ठिकाने लगाऊं, लड़की की शादी कराऊं, पैसा बराबर ठीक करूं, ये व्यवस्था कर दूं पैसे की, आमदनी बराबर रहे, ये सब जो व्यवस्था करने की सोच रहा है, जैसे गामनू करूं, धूले कर तो नहीं ने कर ही नहीं सकता, ये उसका अर्थ है। सांभने विकल्पनो करता ए पण ते उभे करेलू ऊंधी दृष्टि तीछे। देखो ज्ञानी होने पर वो विकल्प भी आने वाले विकल्प को भिन्न जानता है वो। अब अज्ञान अवस्था में क्या रहे, अरे वो विकल्प का तो मैं करता हूँ ना, ये तो करूँ ना, वो तो करूँ ना, यानी शुभाशुभ विकल्प जो आते हैं तो देखो मुझे वो ऐसे आइडिया, इसलिए ये कार्य हुआ, इसे उसका भी उन विकल्पों का कर्ता होकर बैठा है, ये कहना, ये उसकी भूल है। देखते विकल्पनो करता ए पण ते उभे उभू करेलू ऊंधी दृष्टि तीछे, ऊंधी दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि, खोटी मान्यता। पहलू माथे निर्विकल्प तत्व कहू छे ने, ऊपर बताया था ना, निर्विकल्प अभेद निर्भेद उदित ऐसा वगैरह उसका वर्णन आया था भाई। एवा निर्विकल्पनी निर्विकल्प तत्वनी रुचि केम करतो नथी, यानी विकल्प का कर्ता होकर उसको ही उसी की रुचि में पड़ा है, तो ये निर्विकल्प जो तत्व अंदर हाजिर है, प्रत्यक्ष विराजमान है, तो उसकी रुचि क्यों नहीं करता, ये कह रहे हैं। तारी करी थाय छे, तूने कह किए तो हो जा, ये कहीं कोई करावे तो थाय एवू नथी, समझानु कहीं आवो मार्ग, स्वतंत्र निर्लेप मार्ग, निर्लेप यानी वो कर्म से रहित वाला निर्लेप है, एवो परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकरनो कहेलो। अरे जगत ने सांभळवा मळे नहीं, भगवान ने तो यही मार्ग बताया, परंतु बीच में किसी ने अपनी ओर से वो पुण्य करो तो धर्म होगा ये बात घुसेड दी, और भगवान के नाम पर वही बात चल रही है आज की तारीख में सब जगह मोस्टली, यानी कोई एक कल्ट में हो रही है ऐसी बात नहीं, दिगंबरों श्वेतांबरों स्थानिक औसिक कहीं पर भी यही बात चल रही है। अन्य मतियों ने भी यह ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो इस रिचुअल को ही धर्म मान लिया उन्होंने। तो कहते कि तीर्थंकरनो कहलो मार्ग छे, जगत ने सांभळवा मळे नहीं अने सांभळ्या विना ये शुं छे एनी खबरू पड़े नहीं, अने खबरू पड़ा विना क्या वळवू एने एनी खबर नथी। बराबर है ने, एक तो सांभळवा मळे नहीं, सांभळे नहीं तो शू छे एनी खबर पड़े नहीं, अने खबर नहीं पड़ती तो क्या वळवू एनी खबर नथी, वळण केम वाळवू एनी एने खबर नथी, समझाणू काई। अरे एवा आत्मामां, आवो आत्मा एम समझाय छे, जे विचारवंत डाया पुरुषों ने गम्य छे, गम्य ने उनको वो जानने में आ सकता है, अने माथे कहलो एवो छे, माथे यानी उसका पहला जो वर्णन किया ना इस है, माथे कहलो ने ऊपर बता चुके हैं, माथे कहलो एवो छे अने विचारवंत ने गम्य छे, एमा तू रुचि केम करतो नथी। अभी तक उसका इतना इतना वर्णन बताया है, कैसा कैसा है, सुख से बना हुआ है कहा, चैतन्य का पूर है कह दिया, निर्विकल्प कहा, निर्भेद उदित कहा, कितनी कितनी बातें बताई, इतना सारा बताया और फिर भी इसकी रुचि कहीं ना कहीं दूसरी ओर है। एटले तू विचारवंत थईने ढायो थईने तू केम रुचि करतो नथी, एम थयू के नहीं, अने दुष्कृत रूप संसारना सुखने केम वांछे छे, दुष्कृत ने पाप रूप, ये संसारिक सुख क्या है, पाप रूप है, क्योंकि उसको सुख मानना ये बड़ा मिथ्यात्व का पाप है, और वो भोगों के परिणाम इटसेल्फ भी पाप है, तो वो पाप रूप जो है उसको तो क्यों चाहता है, આ ભગવાન આત્માની રુચિ કરતો નથી અને શુભ અશુભ રાગ એ છે ને માથે પ્રીતિ અપ્રીતિ એવા દુષ્કૃત રૂપી સંસાર એમ એ શુભ અશુભ ભાવ બધું દુષ્કૃત છે અકેલે પાપ કો દુષ્કૃત નહીં કહા ખોટા કાર્ય શુભ અશુભ દોનો કો ખોટા કર દિયા એનાથી હરખ હરખ વિનાનું કીધું છે ને એ શુભ અશુભ ભાવ તો દુષ્કૃત છે એવા સંસારના સુખને જેના ફળ સંસારની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા મળે એવાને કેમ વાંચે છે અભી પૂરી પ્રતિકૂળતા કોઈ વાંચતા નહીં હોગા પણ અનુકૂળતા કી તો વાંચા સબ કર રહે હે ના મુજે યે અચ્છા મિલે તો અચ્છા હૈ એસા સંયોગ હો તો બઢિયા હૈ ઓર સારે પ્રયત્ન સારા જો કુછ કહાં ચલ રહા હૈ ઉસકા સંયોગોં કો ઉસકે અપને ઈચ્છા કે અનુસાર પલટાને કા પ્રયત્ન ચલ રહા હૈ વો પલટતે હૈ નહીં હૈ વો બાત અલગ હૈ ઓર જો પલટેંગે ભી તો તુમ્હારે કરને સે નહીં પલટને વાલે તો કહે તે સંસારની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા મળે એવાને કેમ વાંચે છે યાને ઉસી મેં ક્યો તું રચા પચા રહેતા હૈ યે દુઃખરૂપ હૈ સબ કુછ ઇતના જરા શાંતિ સે વિચાર કરેંગે તો ખ્યાલ મેં આયેગા કે ઇસી મેં આકુલતા હૈ ઓર આકુલતા યે દુઃખ હૈ કે જિસકો સભી અચ્છે સંયોગ હૈ ક્યા ઉસકો આકુલતા નહીં હોતી હૈ હા આકુલતા તો ઓર બઢેગી અરે યે સંયોગ બરાબર ટીકેગા કે નહીં ટીકા यानी ये उसके पीछे हर समय ऐसा विचार चलता है सब कुछ अच्छे ठीक ठाक है अरे कोई बीमार नहीं हो जावे कोई मर नहीं जावे पैसा बराबर रह जावे कोई गवर्नमेंट का कोई कायदा कानून बदल गया तो हमारा सब हाथ से चला गया ये इसके पीछे तो रहा है कि नहीं टेंशन उसके पीछे यानी जो है वो भी कायम रहेगा उसकी गारंटी नहीं है इसलिए उसकी उसको उसी की चिंता तो रहती हो या आकुलता बनी रहती है કે એમાં ધૂળમાં ક્યાંય સુખ નથી કિતની બાર ઉસકો ધૂળ કહી દીયા વો તો જડ હી હૈ ના પુદગલ પરમાણુ કા પિંડ હૈ વો ભી સમજાય છે બે કીધું આને કરતો નથી અને વો તો આત્મા મેં રુચિ નહીં કર રહા હૈ અને દુષ્કૃત સંસારના સુખને કેમ વાંચે છે અને યે નહીં કર રહા વો કર રહા હૈ ઇસલિયે કહેતે એસા ક્યું કર રહા તું આમ કરતો નથી અને આમ કેમ કરે છે એ શ્લોક પૂરો થયો અને ઉનકી ઉસમે ભી કિતની કરુણા હૈ કે જીવોં કો અરે તું હમ કહેતે અરે એ ક્યો કર રહા હૈ એસા ઇતના સરલ માર્ગ હૈ સ્વાધીન માર્ગ હૈ એસા ભી નહીં કોઈ પરાધીનતા હૈ ઉસમે બિલકુલ સબ કુછ હૈ ને સ્વયં આત્મા તો બિરાજમાન હૈ અનાદિ અનંત વૈસા કા વૈસા એસા ભી નહીં કે ઇતના પાપ કિયા ઇતના ખોટા કિયા ઇતના ખોટી માન્યતા કી ઇસલિયે આત્મા મેં કુછ ગડબડી હોગી એસી તો બાત નહીં હૈ ये पर्याय में जो है वो भी आत्मा के अंदर नहीं है जिसको यहाँ त्रिकाली स्वभाव भाव कहा तो ये पर्याय की जो गड़बड़ी चल रही है अभी तक हो गई तो जाने दो अभी तो क्यों नहीं उसकी रुचि करता ये कहने मोक्ष उसे ये केम करतो न थी ये कहने से कोई दूसरा दूसरे की बात है अपनी बात कर नहीं कर रहा है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं કેમ કરતો નથી ઉત્તર કેમ કરતો હશે એટલે આ ઊંધી માન્યતાને લઈને એને ઉસકી માન્યતા ઉલટી હૈ ને ઉલટા હી માન લિયા કે સંસારમાં સુખ હૈ અહીં કીધું શું આ રુચિ કરતો નથી માટે આમ રુચિ કરતો નથી માટે આમ રુચિ કરે છે એ માટે ક્યાં કહા સંસાર કી રુચિ હૈ પર પદાર્થો મેં કહી ના કહી રુચિ પડી હૈ ઇસલિયે વો અપની રુચિ નહીં કર રહા યે ઉસકા ઉત્તર હૈ સીધી વાત છે એક ને એક બે જેવી વાત છે મીઠાશ ચડી ગઈ છે મીઠાશ આમ બહારની એમ કહે છે બહાર કી ચીજો કી મીઠાશ એની ઉસી મેં રચા પચા હૈ ઉસી કી રુચિ હો રહી હૈ કિતના ભી ઉસમે ક્યોં ના ટેન્શન આ જાય ફિર ઉસી મેં જેસે વો કહે ના અપના સારા પ્રયત્ન ચેષ્ટા દિમાગ ઉસી મેં લગાયેગા આ વસ્તુ આ કોણ છે એના ખ્યાલમાં મહત્તાને મહાત્મ્ય જ આવતું નથી અને આપણી સ્વયં કા મહત્તમ સ્વયં કી મહાત્મ્ય નથી આ બાહ્ય ક્રિયાકાંડી અનંતવાર સાધુ થયો ક્યાં કહા ખાલી ગ્રહ સમય રહેકર વ્રત કિયા એસા નહીં કહા સાધુ કે ભાઈ વ્રત અનંતવાર કે એક દો વાર નહીં પંચ મહાવ્રતનો પાળનાર 28 મૂળ ગુણ પાળનાર દિગંબર સંત હો, દિગંબર દ્રવ્યલિંગી, પરંતુ વો કૈસે હૈ? બાહ્ય સભી ક્રિયા બિલકુલ નિરતિચાર પાલી, પરંતુ અંતરંગ મેં આત્મા કા અનુભવ નહીં હુઆ. યહાં જો વર્ણન ચલ રહા હૈ તો ઉસકા લક્ષ્ય કરકે ઉસકા અનુભવ નહીં કિયા, और बाह्य में सारे ही व्रत आदि बिल्कुल जैसे आगम में बताए वैसे पालन किए. आम आ आओ आत्मा एवी रुचि तू करतो नथी, ते करी नथी. और दुनिया को ये बाह्य रूप बाह्य व्रत आदि की ही महिमा आती है और वो देखा देखी वही करना चाहता है. शास्त्रों में तो कितनी जगह लिखा है कि ऐसे जो मुनि है ना, बिल्कुल दिगंबर द्रव्यलिंगी है, बिल्कुल निरतिचार पालन कर रहे हैं और आत्मा का अनुभव नहीं, उनसे तो वे गृहस्थ श्रेष्ठ है जिन वो अवृत्ति है और उन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है. बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया, एक नहीं अनेक जगह. अनेवा शुभादि भावमा रुचिमा पड़ो. देखो ये शुभ भाव की रुचि में, क्योंकि उसको और धर्म मानकर कर रहा है. उसकी रुचि क्यों है? क्योंकि वो संयोग उससे मिलते हैं और उसको करते रहने चाहिए और मेरे अच्छे संयोग मिले. अरे संयोग अभी जितने मिले वो है ना अभी, और कौन से अच्छे संयोग चाहता है? नहीं नहीं मनुष्य बनना है तो अभी क्या गधा है क्या मनुष्य है? अभी मनुष्य बन गए ना तो अभी शास्त्र स्वाध्याय करके अपना निज का अनुभव कर सकता है, तो और कौन सा मनुष्य बनना चाहता है? और मनुष्य बनना चाहता है, मनुष्यायु बांधनी है तो मिथ्या दृष्टि रहना चाहता है. समझ में आती है ना? कोई चारों ही गति में सम्यक तो हो सकता है, किसी एक गति के कारण ही अपना कार्य रुका नहीं है, क्योंकि हम तो वही के वही है, गति से जुदे ही है ना, कि गति रूप होने वाले हैं. मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये गति आदि से तो रही थी हूँ, तो कहीं पर भी क्यों ना जन्म हो, उससे क्या लेना देना है? और जो सिद्धात्मा की रुचि हो जाती है, समय दर्शन हो जाता है, तो उसके तो बहुत सुधरते अपने आप ही हो जाते हैं, वो सहज व्यवस्था है. उसके लिए उसके कुछ नहीं करने है. कौन सा वो मिलेगा वहां, मेरे क्या संयोग होगा? अरे क्या संयोगों से तू भिन्न है, तो अभी के संयोगों से भिन्न है तो आगे के जाके मुझे ये संयोग मिले कि वो संयोग मिले, इसकी क्यों सोचना है? बिल्कुल यानी जिसको कहें ना सीरियसली इस बात को विचार करना चाहिए, क्योंकि यहां तक हम आए हैं कि इतना सुनने तक कार्य भी हुआ है, उसकी रुचिपूर्वक सुन भी रहे हैं. उन केवल सुनने से नहीं, वो शुद्धात्मा की रुचि हो जाए. अभी तो सुनने में अच्छा लग रहा है क्योंकि कार्य तो करना है हमें अपना, परंतु वो लक्ष्य अगर चूक जाएगा तो ये सब करके नहीं करने जैसा हो जाएगा. जिसको अनंत 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 काल में ऐसा अवसर आ जाता है और ये अगर चूक गया तो चूक गया. 75 पृष्ठ सुशीला, ये यहाँ तो हो गए कि ये रुचि क्यों नहीं करता अपनी, अपनी रुचि क्यों नहीं करता, तो बाह्य में कहीं ना कहीं रुचि पड़ी है इसलिए अपनी रुचि नहीं हो रही, ये उसका सीधा उत्तर है. तो मोक्षण पूछे ऐसे क्यों हो रहा है, तो कहते उंधी मान्यता नहीं लेने, ये उसकी मिथ्या भ्रमणा चल रही ना, ये भ्रम ऐसा है कि उसको बाहरी रुचि लगती है, अपने महात्म्य ही नहीं आ रहा है उसको. अहीं किदुशू आ रुचि करतो नथी माटे, આમ રુચિ કરતો નથી માટે આમ રુચિ કરે છે. એને યહાં નહીં રુચિ કરતા, બહાર રુચિ કર રહા હે, બહાર રુચિ કર રહા હે એટલે યહાં નહીં રુચિ હો રહી હે. હા હો ગયા ના? હા હા હો ગયા હો ગયા, બહુત બહુત. સુશીલા તો પીછે ગઈ, પેરેગ્રાફ હો ગયા બરોબર. અભી 40 નંબર કી ગાથા પડેંગે. नोठी दिबंध ठाणा पयड़ी ठाणा पदेश ठाणा वा नो अनुभाग ठाणा जीवसन उदय ठाणा वा न स्थिति बंध स्थानानि प्रकृति बंध स्थानानि प्रदेश स्थानानि वा नानुभाग स्थानानि जीवस्य नोदय स्थानानि वा. पीछे स्थिति बंध स्थानो प्रकृति स्थान प्रदेशना स्थानो नहीं અનુભાગ ના નહી સ્થાન જીવને ઉદય ના સ્થાનો નહી. ઉસકા અર્થ દેખતે યહાં પર અન્વયાર્થ પડેંગે. જીવસ્ય અને જીવને ન સ્થિતિબંધ સ્થાનાની સ્થિતિબંધ સ્થાનો નથી. દેખો જબ કર્મ કા બંધ હોતા હૈ યાની જીવ કો કર્મ સંયોગ મેં હૈ પરંતુ વો જીવ મેં ઘુસા નહીં હૈ તો જીવ કે કુછ નહીં એસા કહેંગે. ફિર ભી જબ હમ કર્મકાંડ પઢતે હૈ યા અન્ય જો કર્ણાનિયોગ કે ગ્રંથ પઢતે હૈ તો હમ કહેંગે પ્રત્યેક સમય મેં જીવ રાગ દ્વેષ મોહ કરતા હૈ તો પ્રત્યેક સમય મેં કર્મ બંધતે હૈ તો બનતે હૈ તો કૈસે બનતે હૈ તો કોઈ ના કોઈ પ્રકૃતિ બંધ રહી હૈ ઉસકે નંબર ઓફ પરમાણુ બનતે હૈ તો પ્રકૃતિ બનતી ઉસકો પ્રકૃતિ બંધ કહેંગે. પ્રદેશ બનતે ઉસકો પ્રદેશ બંધ કહેંગે. નંબર ઓફ પરમાણુ સ્થિતિ કિતની બંધી હિનાધિક તો ઉસકો સ્થિતિ બંધ કહેંગે. ઓર અનુભાગ બંધ ફલ દેને કી શક્તિ યાની પ્રત્યેક સમય મેં યે એસે ચાર પ્રકાર કા બંધ હો હી રહા હૈ. અબ ઉસકે સ્થાન કા અર્થ હોતા હૈ ઉસકે વેરિએશન્સ. અન્ય કિસી જીવ કોઈ જઘન્ય સ્થિતિ બંધેગી કિસી કો ઉત્કૃષ્ટ બંધેગી તો જઘન્ય સ્થિતિ સે લેકર ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તક એક એક સમય કે ભેદ સે અલગ અલગ સ્થિતિ કે બંધ સ્થાન હોગે ઉસકો સ્થિતિ બંધ સ્થાન કહેંગે. હા એસા હો સકતા હૈ કે એક ઇન્દ્રિયો કે જો હૈ ઉસકી રેન્જ અલગ હૈ દ્વિન્દ્રિયો કી અપની રેન્જ અલગ હૈ તીન્દ્રિય કે બીચ મેં ગેપ હોગા પરંતુ અભી હમ એક હી પર્યાપ્ત પર્યાય વાલે જીવ લેતે હૈ તો ઉસમેં એક એક સમય કે ભેદ સે સારે સ્થિતિ બંધ કે અલગ અલગ ભેદ હો સકતે હૈ ને સ્થાન હો સકતે હૈ.
યાની આપ જો સ્થિતિ કી વાત કર રહે હૈ યાની કોઈ 10 કોડા કોડી સાગર કા બંધ કરતા હૈ કોઈ 70 કોડા કોડી સાગર કા બંધ કરતા હૈ યે સ્થિતિ બંધ કે ભેદ
ઇસકે સ્થાન
અલગ જીસકો કહેંગે ભેદ વૈસે સબ મે લેના.
હા સબ મે લેના. પ્રકૃતિ સ્થાન યાની કિતની પ્રકૃતિયા બનતી હૈ ઉસકો પ્રકૃતિ સ્થાન કહેંગે. વૈસે તો 7 પ્રકૃતિયા મૂળ પ્રકૃતિયા બનતી હૈ કભી કભી આયુ બનતી હૈ તો 7 બંધેગી 8 બંધેગી 10વે ગુણસ્થાન મેં જાકર 6 બંધેગી 11વે 12વે 13વે મેં 1 હી બંધેગી ઇસ તરહ ઉસકે સ્થાન. યે તો ઉત્તર પ્રકૃતિયો કી બાત હૈ. અગર મૂળ પ્રકૃતિયો કી બાત કરેંગે તો ઉસકે ભી અલગ અલગ કર્મો કે અલગ અલગ બંધ સ્થાન હૈ. જૈસે નામ કર્મ કિતને બનતે એટ એ ટાઈમ હમને દેખે થે ને નામ કર્મ કે બંધ સ્થાન મોહનીય કે અલગ અલગ હોતે હૈ. ઉસકો યે કિસકો કહેના અભી ઉસકે ડિટેલ મેં નહીં જાના હૈ કિસકો ક્યા કહેતે હૈ ઉસકી હમણાં ચર્ચા. તો યે જીવ મેં નહીં હૈ જીવ કે નહીં હૈ યે કહેના ચાહતે હૈ વહાં સંયોગ મેં હૈ. હમ વ્યવહાર ને એસે કથન કરેંગે તો કહેંગે જીવ ને યે બાંધે હૈ યે જીવ કે એસે એસે સ્થાન પાએ જાતે હૈ દેવો મેં ઇતને હોતે હૈ નારકી મેં ઇતને હોતે હૈ મનુષ્ય કે ઇતને હોતે હૈ એસે સબ ચર્ચા કરેંગે. પરંતુ મૂળ મેં યે બાત જીવ પકડેગે કે અપને આત્મા કે અનુભવ વિના કેવલ ઇનકા અભ્યાસ ક્યા ઉનકા નોલેજ હો ગયા વો નોલેજ કુછ કાર્યકારી નહીં હૈ. સમયસાર મેં બતાતે ના બંધ કે બારે મેં સબ કુછ ઉસને અલૌકિક મેં કિસી કો બાંધ કે રખા હૈ તો કૈસા બાંધા કોણ સે કલર કે વાલી રસ્સી સે બાંધા હૈ કિતની ગાંઠે બાંધી હૈ ક્યા 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 સબ જાન લિયા ઉસને ઓર ફિર ભી ઉસકા કોઈ છૂટને કા પ્રયત્ન નહીં ક્યા તો જાનના બેકાર હૈ એસા કહેતે. યહાં તો છૂટને કા તરીકા ક્યા હૈ અપને સ્વ આત્મા કા જૈસે અનુભવ કરો ઉસકી રુચિ કરકે ઉસમે સ્થિત હો જાઓ વહી છૂટને કા માર્ગ હૈ. ઇસલે કહેતે યે તો જીવ મેં યે નહીં હૈ યે પહેલે મેં પહેલે નક્કી કરાતે કથન મેં હોગા એસા નિમિત્ત કે દ્વારા કથન હોતા હૈ તો હમ કહેંગે જીવો મેં ઇતને ઇતને અલગ અલગ સ્થિતિબંધ સ્થાન હોતે હૈ યે આગમ કા હી કથન હૈ. ફિર યહાં કહેતે વો જીવ મેં નહીં હૈ ઉનકા કોઈ વિરોધ નહીં આગમ સે. હા તો સ્થિતિબંધ સ્થાન પ્રકૃતિબંધ સ્થાન પ્રદેશ બંધ કા અર્થ હતા એક સમય મેં કિતને પરમાણુ બંધે ઉસકો પ્રદેશ કહેતે. જહાં સમય યોગ જ્યાદા હોતા હૈ વહાં યે પ્રદેશ ભી જ્યાદા બનતે તો યોગ સ્થાનો કે જીતને ભેદ હૈ ઉસને પ્રદેશ સ્થાનો કે ભી ભેદ હો ગયે. અબ અનુભાગ મેં હિનાધિક અનુભાગ બનતા હૈ કભી કમ અનુભાગ બનતા હૈ કભી જ્યાદા. જૈસે પુણ્ય કર્મ બાંધ રહે તો પુણ્ય કર્મ ભી પુણ્ય કે ભી વેરિએશન હોગી ના. રસ્તે મેં ચલતે ચલતે કિસી કો કુછ મદદ કરના વો ભી એક શુભ પરિણામ હૈ. સ્કૂલ ખોલના હસ્પિતાલ ખોલના વો ભી શુભ શુભ ભાવ હૈ. કિસી કો બીમાર હૈ તો ઉસકો દવા પાણી કરના વો ભી એક શુભ ભાવ હૈ. અભી દેવગુરુ કી ભક્તિ કરના वो भी शुभ भाव है, और अपने आत्मा संबंधी जो विकल्प है वो तो कितना शुभ भाव है बड़ा। तो ये सारे शुभ भाव के अलग अलग वेरिएशन है कि नहीं है, तो ये कहते हैं तो उसके अनुभाग के स्थान भी जुदे जुदे हो। जैसे आपको मालूम है ज्ञानावरण कर्म मिथ्या दृष्टि से लेकर दसवें गुण स्थान तक बनता है। हमने देखा पुण्य करो यानी शुभ भाव में भी ज्ञानावरण बन रहा है, अशुभ भाव में भी बन रहा है। हिंसा झूठी करने वाले को भी ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, और हम अभी स्वाध्याय कर रहे तो भी बंद रहा है। पर अभी कैसा बंधेगा, वो अनुभागहीन है क्योंकि वो अशुभ प्रकृति ना, तो अनुभागहीन हीन बंधेगा। और इस समय जो प्रकृतियां बन रही शुभ पुण्य प्रकृतियां, अनुभाग बढ़कर बंधेगा, ये उसका अर्थ होता है। देखो अभी हम पढ़ेंगे यहां से, जीवस्य ने जीव ने न स्थितिबंध स्थानानी, स्थितिबंध स्थानों नथी, उसको बंद ही नहीं, क्योंकि जीव जो है वो बंध और मोक्ष से रहित ऐसा लिया, उसमें कोई पर्याय ही नहीं ली ना। जीव की अपनी बंध मोक्ष पर्याय भी नहीं है उसमें, तो ये स्थितिबंध स्थान जो कर्मों में पाए जाते वो तो उसको कैसे हो गई, ये कहना चाहते हैं। अपेक्षा समझ में आती है या? देखो हमने क्या देखा, पर्याय वाले सब तत्व उसमें जीव में नहीं, ऐसा कहा था ना, उसमें तो जीवादि सब तत्व बहिर तत्व कहा था, यानी सभी पर्याय उनको जुदा किया। ऐसे यानी बंध तत्व भी जुदा है कि नहीं, तो वो बंध तत्व में जो अजीव का जो बंध है कर्मों का, उसमें ये जो स्थान पाए जाते वो भी जीव के नहीं, ये इतना सरल बता रहे। देखो
यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ जो जीव है उसकी जो सम्यक पर्याय है, यानी जिसको हम संवर निर्जरा और मोक्ष कह रहे, वो भी उस स्वभाव में नहीं है, अपनी स्वयं की पर्याय अपने स्वभाव में नहीं है। तो ये जो बंध उदय वगैरह की जो कुछ बात चल रही स्थिति, ये तो सारी कर्मों की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, तो वो मेरे में कैसे होगी, ऐसा पूछ रहे हैं, यानी नहीं होगी ये बात।
यानी जीव की जो जीव के अशुद्ध पर्यायों के कारण, विकार के कारण ये बनते हैं। अब ये कोई भी पर्याय हमने शुद्धात्मा में रखी नहीं है, शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है, तो उसमें कुछ है ही नहीं है, तो उसमें कैसे, उसमें ना कर्म है ना कुछ। कल तो बात बताए ना उसमें कि शुभ परिणति भी उसमें नहीं है, तो उसमें शुभ कर्म भी नहीं है, तो संयोग भी उसके अंदर नहीं है, ऐसा सब कुछ बताया था। ऐसे कर्मों के स्थानों की भी चर्चा है। देखो पढ़ेंगे हम अन्वयार्थ फिर, जीवस्य ने जीव ने न स्थितिबंध स्थानानी, स्थितिबंध स्थानों नथी, प्रकृति स्थानानी, प्रकृति स्थानों नथी, प्रदेश स्थानानी वा प्रदेश स्थानों नथी, न अनुभाग स्थानानी अनुभाग स्थानों नथी, वा के न उदय स्थानानी उदय स्थानों नथी, क्योंकि कौन से कर्मों का उदय है तो जीव का क्या परिणाम होता है, वगैरह कुछ है वो बात ही नहीं इसके अंदर। शुद्ध आत्मा जो त्रिकाली स्वभाव भाव में, ये कुछ भी नहीं है ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आ गाथामा प्रकृति बंध स्थिति बंध अनुभाग बंध अने प्रदेश बंधना स्थानों नो, स्थानों का अर्थ होता है उसके जो भेद, उसके जो वेरिएशंस, अलग अलग जीवों को होंगे या एक जीव को अलग अलग समयों में होंगे, तथा उदयना स्थानों नो समूह जीव ने नथी एम कहू छे। जैसे स्थिति बंध है ना, ये बंध शब्द एक बार लगाया, फिर प्रकृति प्रदेश अनुभाग बताया, इसका अर्थ है स्थिति बंध स्थान, प्रदेश बंध स्थान, प्रकृति बंध स्थान और अनुभाग बंध स्थान, ऐसे उदय में भी लेना। स्थिति उदय स्थान, प्रकृति उदय स्थान, प्रदेश उदय स्थान, अनुभाग उदय स्थान, ये सब इस तरह से लगा सकते उसमें। टीका का दूसरा पैराग्राफ, सदा निरुपराग, निरुपराग यानी वो उपराग बिना का, नीचे फुटनोट देखो, निरुपराग यानी उपराग बिना नु, उपराग का अर्थ क्या है, कोई पदार्थ मा अन्य उपाधि ने समीपताना निमित्ते थतो, उपाधि ने अनुरूप विकारी भाव औपाधिक भाव विकार मलिनता। इसको हम एक स्फटिक के उदाहरण से देखेंगे। स्फटिक मणि कभी देखा है? नहीं देखा, वो तो ये सब लोलक देखा है, तो ऐसा इमेजिन करो ट्रांसपेरेंट है एकदम कोई, तो हमने ऐसा एक बिल्कुल फोर्सेप्स एकदम थिन फोर्सेप्स में पकड़ा तो कैसा दिखता है, कलरलेस दिखता है ना, उसमें कोई कलर नहीं है, वो सारे वो चकाचक दिखता है सबसे भी ओर से, यानी ट्रांसपेरेंट ऐसा इमेजिन करो। अब उसके बाजू में कुछ भी कलर वाली चीज़ें इतना सा छोटा सा एक डॉट लगा लो तो क्या है, पूरे स्फटिक में उसकी झाई आ जाती है। हमने शायद कहीं प्रदर्शनी में वगैरह रखते हैं ना, तो जो कोई ब्लू वेलवेट के ऊपर रखेंगे तो पूरी वो ब्लूइश झाई दिखती है उसमें, और कोई रेड कलर की होगा तो रेडिश झाई हो जाती है। तो ये क्या है, उसकी उपाधि में ये स्वयं उस रूप उसके अनुरूप परिणमित हो जाता है। अभी इसको फिर पढ़ेंगे, कोई पदार्थ मां अभी स्फटिक मणि माइसा लिखेंगे, अन्य उपाधि नि समीपताना निमित्ते, उसके बाजू कोई कलर वाला फूल रखो लाल फूल तो उसके निमित्त से, थतो उपाधि ने अनुरूप विकारी भाव, अब वहां जो लाल फूल रखा तो लाल जैसा वो स्वयं परिणमित हुआ स्फटिक मणि, फूल ने कुछ नहीं किया उसका, क्योंकि फूल हमने बाजू में लकड़ी के साथ रखा, पत्थर के साथ रखा, अन्य चीज के साथ, कुछ नहीं हुआ उसमें, ये स्वयं स्फटिक उस रूप परिणमा उपाधि के अनुरूप। निमित्त के लिए क्या शब्द आया था कल याद है, अनुकूल होने का आरोप, निमित्त अनुकूल है इसके, और ये स्वयं कैसा परिणमित हो रहा है, निमित्त के अनुरूप परिणमित हो रहा है। अब जीव क्या है, जीव जो है उसके लिए हम कहेंगे, अभी गुरु शिष्य की बात करते हैं, कर्म की बात छोड़ो, तो हमने कहा शिष्य ने पढ़ा यानी उसको कुछ चीजें समझ में आ गई, तो उसके लिए अनुकूलता का आरोप किस पर आया, शिक्षक गुरु पर, तो गुरु उसके अनुकूल थे पर शिष्य उनके अनुरूप परिणमा, समझ में, वो समझने रूप परिणमा, अनुकूल उस अनुरूप उसके अनुरूप परिणमा। ऐसा ही यहां हम देखते स्फटिक है वो लाल कलर के अनुरूप परिणमा, बाजू में लाल कलर है वो लाल के अनुरूप परिणमा, जब बाजू में नीला पीला था उसके अनुरूप परिणमा, इसके उपाधि के अनुरूप स्वयं परिणमता है, वो निमित्त उसको जबरदस्ती नहीं परिणमता, फिर भी उसमें अनुकूलता का आरोप आता है, आरोप आता है, परंतु यहाँ परिणमने का कार्य तो उस जी उपादान ने किया है, वो निमित्त को अनुरूप, निमित्त तो वहां उपस्थित है बस इतना ही, उसके अनुरूप ये स्वयं परिणमा है। तो यहाँ कहते उपाधि ने अनुरूप विकारी भाव, हाँ अभी जीव में ले सकते हैं, कर्म का उदय है तो कर्म का उदय है निमित्त है, और जीव उसके अनुरूप यहाँ परिणमित हो रहा है, क्योंकि कर्मों में तो सबसे भी पड़े है क्रोध मान माया लोभ सभी कुछ पड़े है, जो स्वयं वो क्रोध कर्म को निमित्त बनाकर स्वयं उसके अनुरूप परिणमता है, क्रोध रूप परिणमता है, वो कुछ माया और लोभ ने उसको कुछ मना नहीं किया था वो स्वयं क्रोध रूप परिणमित हो रहा है। हाँ हम कहें ना उस समय उसका भी, ये हम जीव के परिणाम देखकर कहते हैं इनके क्रोध का उदय चल रहा है, क्योंकि क्रोध उसके अनुसार परिणमित हो रहा है, ये कथन पद्धति होती है, पर वो कर्म जबरदस्ती के जीव को क्रोध कराए, देखो हम कहते वो तो क्या कर्म जैसा, नहीं तो कितना पराधीन होगा जीव, कर्म रुलावे तो इसको रोना पड़े, कर्म हंसावे तो इसको हंसना पड़े, कर्म क्रोध करावे तो इसको क्रोध करना पड़े, यानी इतना पराधीन हो गया तो कर्म जैसी जड़ चीज उसको कुछ भी करा ला देते हैं, तो कितना कितनी पराधीनता हो गई उसकी, ऐसा नहीं है। यदि ये स्वतंत्र नहीं हो करने में तो फिर वो स्वयं अपनी ओर मुड़ कैसे सकेगा, समझ में आती है ना बात, ऐसा नहीं है क्रोध का उदय है तो करेंगे, ऐसा नहीं है, हम जीव करते हैं तो क्रोध कर, जैसे सभी अंदर पड़े हैं ना परमाणु, अब परमाणु पड़े हैं परंतु हम क्रोध का उदय आया इसलिए क्रोध रूप नहीं परिणमे, हम क्रोध रूप परिणमे हैं तो वहां क्रोध का उदय उसी समय पाया जाता है, ये ऐसा नहीं कि वो पहले उदय आया इसलिए हमको परिणमा पड़ा, ऐसा नहीं है। अब जब हम यहाँ अभी हम यहाँ बैठे हैं एक घंटे से, कितने क्रोध रूप परिणमित हो रहे हैं? हम क्रोध रूप नहीं परिणमित हो रहे, तो हम वहां क्रोध का उदय भी नहीं कहेंगे उसको। अभी जो उदय रूप परिणाम परमाणु का जो है, एक घंटे के लिए उदय तो रुकेगा नहीं। आप कब स्वाध्याय बंद करते हो, कब हमें उदय में आओ, ऐसा तो है ही नहीं है। समझ में ना, वो भले उदय में आते गिरते चले जाते हैं, उसका अनुभव वो जीव के अभी विचार तत्व विचार में इतनी बुद्धि लगी है कि अपने आप वो मंद होकर ही उदय में आते हैं। ये सहज ऐसा जीव के परिणामों के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव
आपका जो कहना है कि कर्म उदय में आते हैं तो हमको क्रोध करना पड़ता है, ऐसी अपनी मान्यता है, तो मुझे ये बताए कर्म उदय में आया ये देखा क्या आपने कभी? तो फिर कैसा कहते हैं आप? ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ जीव के क्रोध रूप परिणाम होना और उसी समय उदय होना, अगर पहले उदय में आया तो उसके बाद में क्रोध किया तो कह सकते कि इसके कारण से हुआ, ख्याल में है ना? लेकिन दोनों का समय एक ही है, वो तो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी क्रोध कर्म का उदय आना ये निमित्त है, और यहाँ क्रोध रूप परिणमन करना वो नैमित्तिक है। और ये जिनेन्द्र भगवान ने जाना है और उनके कथन के अनुसार हम उसको अनुमान से मानते हैं, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि देखो हमने धक्का दिया तो ये आगे गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन बात ऐसी है, ये आगे जाना था, उस समय धक्का उसको मिल गया, धक्के से वो जाता था तो फिर वो रुकता ही नहीं था, जाता ही रहता था। यानी एक बात निश्चित रखना कि ये जो कार्य हो रहा है वह क्रोध का, वो जीव स्वयं कर रहा है। और वहाँ कर्मों को ज्ञान है क्या? तो अभी इसको क्रोध आना चाहिए, इसको रोना आना चाहिए, उसका उदय मैं लाऊं, ऐसा कर्म को नहीं आता है। लेकिन वो जब होता है तो उसका उदय है ऐसा कहने में आता है। लेकिन दो भिन्न द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखना। आगे
मैंने इसकी भूल क्या हो रही है, जो कुछ उदय रूप कर रही है क्रोध आ रहा है, तो मैं क्रोध रूप हूँ ये उसकी मान्यता, मैं तो ज्ञान रूप हूँ, उसने अपने को क्या माना? मैं क्रोध रूप हो गया हूँ, यानी ज्ञान और क्रोध को मिक्स करके वो जानता है। वो ज्ञान की और क्रोध की जुदाई उसके ख्याल में नहीं आती, ये जुदाई पर पहले हमको ख्याल करना है कि मैं तो जानन मात्र हूँ और ये मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, ये जुदे हैं, इस तरह से उसके साथ भेद ज्ञान करना है अपने ही क्रोध हम के साथ। ख्याल सर, अभी तो राग का भी लक्ष्य है, राग है ये हम जान रहे हैं और मैं जुदा हूँ, अभी तो दोनों को जानते हुए जुदाई कर रहे, फिर उसका लक्ष्य ही छोड़ देना और बस स्वरूप में गुप्त होना, मैं तो ऐसा हूँ करके ज्ञान मात्र का ही लक्ष्य करना। पहले क्रोध का लक्ष्य था, पहले ज्ञान और क्रोध एक में ही लगता था और पूरे पूरे पर्याय का ही लक्ष्य था। अब जब ख्याल में आ गया कि पर्याय में मैं तो ज्ञान का कार्य कर रहा हूँ, ये क्रोध जुदा है, तो लक्षणों के द्वारा पहले उसको भिन्न भिन्न जाना। अभी भी भेद करने के लिए दोनों का उसको लक्ष्य है, लक्ष्य दोनों का कर रहे हैं ना, हाँ, परंतु अभी इसके आगे क्या क्या है? अभी क्रोध मेरा स्वरूप नहीं, वो तो मेरे से अन्य लक्षण वाला है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो ज्ञान स्वरूप पर्याय में जितना ज्ञान होता है उतना ही मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली ज्ञान स्वरूप ही हूँ। फिर वो राग तो कहाँ का कहाँ चले, उसका विचार भी नहीं है, अभी अपने स्वरूप में लीन होना, तब जाके जो नेक्स्ट होने वाले जो पर्याय है, भले वो स्वरूप में गुप्त नहीं भी है, अभी जो आने वाली पर्याय है वैसा तीव्र क्रोध मान माया लोभ नहीं रहेंगे उसको, जिसको अनंतानुबंधी नाम देते हैं। अभी तो उसको ऐसा बार बार सोचना नहीं पड़ता, पहले तो भेद ज्ञान के लिए जो कुछ विचारधारा चली, अभी तो उसके अनुभूति में है कि ये तो जुदा ही है, उसको प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है कि ये जुदा है, मैं जुदा हूँ।
देखो शुरू में पहले में तो विकल्पात्मक भूमिका रहती है कि मैं जुदा हूँ और ये जुदा है, मैं ऐसा स्वभावी हूँ वो वैसा स्वभावी है, ऐसा भेद ज्ञान करने का जब कार्य हो रहा है वो विकल्पात्मक भूमिका है। अभी आपने बताया कि जब हम उसका विचार छोड़कर किसका, क्रोध का या कर्म का, स्व के बारे में सोच रहे, वो भी विकल्पात्मक भूमिका है। लेकिन इन विकल्पात्मक भूमिका में से ही वह जीव निर्विकल्प होता है और वो आत्मानुभूति है। यानी प्रोसेस तो वही होगा, पहले भूमिका होगी कौन सी विकल्प करने की कि भाई अभी हमने ये सीखा है तो मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं कर्म का कुछ नहीं कर सकता, कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह से हम सोचते सोचते मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, तो हमने कर्म का सोचना बंद किया और ज्ञान स्वरूप और मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसा विकल्प चलते चलते वह निर्विकल्प होता है और वही आत्मानुभूति है जिसको कहे सम्यक तो है, धर्म की शुरुआत है, जो भी आप कहो।
हाँ देखो, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे टीका की तीसरी लाइन, सदा निरुपराग, सदा कहा कायम, क्योंकि ये उपराग विनानु, उपराग यानी क्या, ये उपाधि के वहां अनुरूप परिणमित हो रहा था, उपाधि के अनुरूप परिणमित हो रहा था, कौन, पर्याय में, स्वभाव में नहीं, पर्याय में उसके अनुरूप होता है। जिस समय वो स्फटिक लाल रूप वो झाई हो रही है उस समय स्वभाव उसका वैसा ही है ना, निर्मल, ऐसा ही यहाँ पर लेना है कि मेरा भी स्वभाव कैसा है, बिल्कुल चैतन्य निरुपराग। पर्याय में वो कर्मों की उपाधि से वो रागादि का परिणमन हो रहा है, मैं रागादि रूप नहीं हुआ, रागादि रूप वहां परिणमन है और वो उसका स्वयं का ही परिणमन है, कर्म उसको जबरदस्ती नहीं करा रहे है, वो स्वयं उसके अनुरूप होकर परिणमित हो रहा है, परंतु वो बात मेरे स्वभाव में नहीं है। जिसको हमने आत्मा कहा वो हमेशा ही निरुपराग है, सदा निरुपराग।
निरुपराग का अर्थ आगे और आसान किया है।
अच्छा,
औपाधिक भाव।
हाँ लिखा ना, औपाधिक भाव,
औपाधिक भाव और विकार और मलिनता, यानी इनसे रहित ऐसा मेरा त्रिकाली स्वभाव है।
देखो, सदा निरुपराग जेनु स्वरूप छे, एवा निरंजन यानी निर्दोष, निज परमात्म तत्व ने खरेखर यानी इन रियलिटी, द्रव्य कर्मना जघन्य मध्यम के उत्कृष्ट स्थितिबंधना स्थानो नथी। अभी ये स्थितिबंध के जो स्थान है तो जघन्य स्थितिबंध से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक भेद है, उसको हम जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम ऐसे तीन नाम देंगे। ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मों माना, यानी ज्ञानावरणादि अष्टविध ने आठ प्रकार के कर्मों में से तेते कर्म ने योग्य एवो जे कुदगल द्रव्योनो स्व आकार ते प्रकृति बंधचे। क्या कहना चाहते हैं, ये जो आठ प्रकार के कर्म है, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण है, मोहनी है, अंतराय है, फिर यहाँ वेदनी है, आयु नाम गोत्र है, तो कहते हैं ये जो अपनी अपनी रूप से बंधना उसको प्रकृति बंध कहेंगे, यानी आठ प्रकृतियों का बंध होता है या सात का होता है, जो कुछ जितने होता है उसको कहेंगे प्रकृति बंध। तेना स्थानो निरंजन निज परमात्म तत्व ने नथी, यानी उसके जो कुछ अलग अलग भेद है वो जीव के नहीं है। अशुद्ध अंतस तत्वना अने अशुद्ध आत्माना अने पुद्गल कर्मना प्रदेशोनो प्रदेश परस्पर प्रवेश ते प्रदेश बंध छे। यहाँ अलग पद्धति से उसको प्रदेश बंध को समझाया है। एक्चुअली प्रदेश बंध में नंबर ऑफ परमाणु को लेते हैं, परंतु है ना परस्पर प्रवेश होना, प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना, कर्म पुद्गल ना प्रदेशोनो, यहाँ ये प्रदेश लिया है, प्रदेश ने उनकी संख्या, परमाणुओं की संख्या यानी परमाणुओं का परस्पर प्रवेश, यानी आत्मा जहाँ है वहीं उन्हीं प्रदेशों में परमाणु आकर स्थित हो गए, पुराने कर्मों के साथ आकर बंध गए हैं, तो उसको कहेंगे यहाँ प्रदेश बंध। आ बंधना स्थानों पण निरंजन निज परमात्म तत्व ने नथी। देखो जितने हम देखते हैं ना, अभी अपने स्वभाव विषय चल रहा है, जितना योग ज्यादा उतना प्रदेश बंध ज्यादा, योग दो गुना होगा तो समय प्रबद्ध है ना, एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या दो गुना हो जाती है, यदि योग चार गुना हुआ तो प्रदेश बंध वो भी चार गुना हो जाएगा, तो जितने योग स्थान हो गए ना, हम अभी अपना विषय चल रहा है, उतने प्रदेश बंध के स्थान भी हो गए अलग अलग, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू योग, ये उसका अर्थ होता है, परंतु वो जीव को नहीं है। भले वो प्रदेश बंधे जीव में नहीं है, परंतु योग तो जीव का है ना, जीव का विकार है, परंतु विकार है वो शुद्ध आत्मा में नहीं है, ये उसका अर्थ होगा। क्योंकि ऊपर भी जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है वो योग के कारण होता है। आप कहेंगे कर्म परमाणु जीव में नहीं, भले नहीं है, परंतु योग तो जीव का है ना, है, परंतु जीव का उपाधिक भाव है, और ये मैं जिसको आत्मा कहा वो सदा निरुपराधिक है। निरुपराग बताया। अभी आए हैं नीचे से चौथी लाइन उस पैराग्राफ की। शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय, देखो हर समय कर्म खिर जाते हैं, उदय रूप होकर खिरते, उसको भी निर्जरा कहते हैं, और वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा जुदी है, तपस्या जो निर्जरा होती वो बात जुदी है, और यहाँ तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो उदय उसका फल मिल रहा है उसका अर्थ क्या है, वो खिर रहे हैं। जैसे आप कोई चीजें लाते हैं बाजार से तो पैसे छोड़कर वो चीजें लाते हैं, तो यहाँ वो शुभ कर्म खिर रहे हैं तब उसका उदय रूप कुछ कार्य दिख रहा है आपको। ऐसे शुभ और अशुभ कर्मनी निर्जराना समय सुख दुख रूप फल देवानी शक्ति वालो ते अनुभाग बंध छे, यानी उसका फल कब मिलेगा, जब उदय आएगा, परंतु वो बंधा कब, जब वो बंधे तभी उसमें वो अनुभाग नक्की हुआ है, उसको बंध कहना। उदय में आएगी खिर जाएंगी तो उसको उदय में गिनेंगे, अभी तो बंध की बात चल रही है, पर बंध के समय में उन कर्म परमाणुओं में फल देने की शक्ति नक्की हो गई है, इसलिए उसको अनुभाग बंध कहते हैं। आना स्थानोपन अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व ने विषय न थी, क्योंकि ये जो स्थिति बंध और जो अनुभाग बंध है वो कषाय के अनुसार होता है। अब कषाय ही जीव में नहीं है तो ये बंध कहाँ से आएंगे, इस तरह से लेना उसको, क्योंकि जीव में नहीं है नहीं, वो पर्याय वाली बात है, वो आश्रव तत्व में चले गए, आश्रव ही नहीं तो उसके कारण होने वाला बंध कैसे होगा। वरी द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म दोनों लिए ना यहाँ पर, देखो द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म ना उदय ना स्थानोपन अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व ने विषय न थी। यानी इसे द्रव्य कर्म का उदय होता है तो यहाँ मोह राग द्वेष के परिणाम भी होते हैं, अन्य अन्य जो कुछ हो तो वो भी जीव के वो जो निरुपराग जो स्वभाव भाव है उसमें वो नहीं है। एवी रीते आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्र सूर्य श्री समय सारनी आत्मख्याति नामनी टीका में 11वां श्लोक द्वारा कहूं छे, 75 नंबर पर वो श्लोक बताया, और श्लोक का उद्धरण किसने किया है, ये उद्धृत किसने किया, पद्म प्रभु मलधारी देव। संस्कृत टीका में वो अमृतचंद्राचार्य का रेफरेंस दे रहे हैं। पीछे के पेज पर चलना 75 पर, नीचे लिखा है ना तथाच उक्तम श्री अमृतचंद्र सूरी भी, यानी अमृतचंद्र सूरी ने भी उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमि स्फुटमुपरितरन्तोऽप्येत्ययत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवति तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगत मोही भूय सम्यक स्वभावम्। उसका अर्थ यहाँ देखते हैं 76 पृष्ठ पर श्लोकार्थ। जगत मोह रहित थईने, वहां लिखा है ना जगत अपगत मोही भूय, जैसे हम अपगत वेद कहते हैं वैसे ही अपगत मोही भूय यानी होकर, तो जगत मोह रहित थईने सर्व तरफ की प्रकाशमान एवाते सम्यक स्वभाव ने ज अनुभवो, सर्व तरफ की प्रकाशमान, वो प्रकाशमान का है ना उदित कहा है उसको, और नित्य उदित कहा था उसको, तो कहते मोह रहित थई ने सर्व तरफ की प्रकाशमान एवा ते सम्यक स्वभाव ने ज अनुभवो, यानी उसी का अनुभव करते रहो, ये भावना कह रहे के जेमा आ बद्ध स्पृष्टत्व आदि भावो उत्पन्न थईने स्पष्टपणे ऊपर तरता हुआ छता खरेखर स्थिति पामता नथी। ये बद्ध स्पृष्ट क्या होता है, आत्मा बंधा हुआ और स्पर्शा हुआ ऐसा कह रहे। तो आत्मा का स्वभाव कैसे? अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध और अस्पृष्ट ऐसा स्वभाव है। ना कर्मों से बंधा हुआ है ना स्पर्शा हुआ है, क्योंकि वो जो भिन्न दो द्रव्य है उससे उससे कुछ संबंध नहीं है। ये बात पहले बता चुके थे। और यहाँ क्या कहते हैं? तो कहते कि स्वभाव का अनुभव करने पर ये बद्ध स्पृष्ट भाव है, पर्याय की जो औपाधिक भाव है वो स्पष्ट रूप से ऊपर ऊपर तरते हुए भाषित हो गए, तो जुदे भाषित हो जाएंगे। यहाँ का ना वो सारे बहिर्तत्व कह दिए उसको, इस तरह से उसको ऊपर छता हुआ छता खरेखर स्थिति पामता नहीं। किसमें? सम्यक स्वभाव में, यानी सम्यक स्वभाव में ये कोई होते ही नहीं है, ही नहीं है। तो उसका अनुभव जब सम्यक अपना कर रहा है स्वभाव का, तो उसमें ये सब जो कुछ भाव है बद्ध स्पृष्ट आदि सभी भावों वो ऊपर ऊपर तरते हुए उसके अंदर प्रवेश नहीं पाते, ये जुदे ही जुदे रहते हैं, जुदे ही जुदे अनुभव में आते हैं। यानी उसका अनुभव चल रहा है तो ना उसमें कोई रागादि विकल्प दिख रहे हैं हमको और ना ही कोई अधूरी पर्याय, वो बस स्वभाव स्वभाव को ही पूरा अनुभव चल रहा है उस समय, ये कहना चाहते। हाँ, अभी आना 77 पृष्ठ पर। इसका प्रवचन ए शुद्ध भावनी व्याख्या छे आ। शुद्ध भाव कहो के आत्मा वस्तु 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 ध्रुव उत्पाद वेनी पर्याय विनानु तत्व आखू। ए वस्तु शू छे एने अहीं आत्मा ने शुद्ध भाव कहेवामां आवे छे। शुद्ध भाव का अधिकार है तो शुद्ध भाव किसको कहना वो पहले में पहले दोबारा बता रहे हैं। अने एना आश्रय नियम सार एटले मोक्ष मार्ग प्रकटे छे। पहले बात आई कि नियम किसको कहा? ये तो समय दर्शन ज्ञान चारित्र को नियम कहा था, और सार शब्द से वो व्यवहार की बात नहीं है, निश्चय की बात है ये बताई थी। तो कहते ये नियम सार कैसे प्रकटेगा? तो कहते शुद्ध भाव के आश्रय से प्रकटेगा। ए मही केहूं छे आ नियम सार छे ने मोक्ष मार्ग समय दर्शन ज्ञान चारित्र ए आवाज स्वरूप ने आश्रय प्रकट थाय छे। हमें तो समय दर्शन तो चाहिए, परंतु ये स्वरूप निश्चित करके उसमें ठहर जाएंगे तो ये प्रकट हो जाएगा। बाकी त्रण काल में बीजो एनो प्रकार पंथ अने रीत नथी। समझानो काय? मोक्ष मार्ग का कोई ऐसा दूसरा मार्ग होगा, शॉर्टकट होगा या लॉन्ग कट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग समय दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकट होने का जो उसकी रीत यही एक है कि शुद्ध भाव के आश्रय से ही वो प्रकट होगा, अन्य किसी भी आश्रय से नहीं होगा। ये दोनों ओर से नक्की करते ना, इसी से होगा अन्य किसी से भी नहीं होगा, इतना बिल्कुल कन्फर्मली वही उसकी बात कर रहे। हमने तो अभी गाथा पढ़ी थी नीचे, पोकार करे छे अरे पण अत्यारे आ बधु छे ने, तमे अबद्ध स्पृष्ट अत्यारे मानो छो, पण आ अत्यारनी वात छे वस्तु दृष्टि ने। क्या कहा? कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं, अरे अभी तो बंधा हुआ है ना, अभी क्यों ना पड़ो छो? तो कहते अभी वर्तमान की बात कर रहे, भले वो पर्याय में बंधा हुआ है, निमित्त है वो, उसका ज्ञान का गेय है, सब कुछ है, परंतु कहते कि यहाँ वस्तु के दृष्टि की बात चल रही। ओला कह के एकांत थी जाए छे, एकांत थी जाए छे, पण पर्याय मां छे वस्तु मां नथी। यानी उसको सर्वथा इनकार नहीं किया, पर्याय मां छे। पर्याय का क्या? ये तो जीव की पर्याय में भी वो सारे भाव है ना, पुण्य पाप आश्रव बंध सब, वो भी अब स्वभाव में नहीं है, तो ये बाकी तो कहाँ से आएंगे उसके अंदर? तो पण पर्याय मां छे वस्तु मां नथी। इसको बारंबार चिंता वो पर्याय की लगी रही है। जब वस्तुमा नहीं कहते हैं तो उसको सीधी तरीके एक्सेप्ट करने की बात नहीं, तो पर्याय कहाँ गई? क्या होगा उसका पर्याय कहाँ? अरे चिंता मत कर, वो पर्याय हो रही है और होती रहेगी और वो उसी का परिणाम है। परंतु अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? स्वभाव की। उसमें पर्याय नहीं है। भक्ति किसको कहना? परमात्मा भक्ति। अभी परमात्मा समझ में नहीं आ रहा तो भक्ति का है कि? भक्ति तभी शुरुआत हो जाएगी। वो निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति केवल शुभ विकल्प, और वो मुंह से बोलना वो भक्ति भी नहीं है, वो जड़ की क्रिया है। समझ में आई बात? ये ज्ञानी की बात समझने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, क्योंकि उनके वचन तो वे की वे होते हैं। अभी हमने वो सुखयामय में भी देखे हैं, वहाँ पर भी बताया था नमस्कार, उसके आत्म साधना में आत्म भावना में देखा कितनी बार उपासना करना। धवला में उस दिन बात आई थी, नमस्कार तो समय दर्शन से नमस्कार होता है, पहले भगवान का नमस्कार तब से शुरू होता है। और जो भगवान की प्रतिमा, जो अभी अष्टपहर के हमने प्रवचन सुने उसमें भी है, भगवान की प्रतिमा किसको कहना, जिनबिंब जिनबिंब, ये जिनबिंब है जो हमारा स्वभाव भाव है, वो जिनबिंब है, उसके दर्शन हो गए तो हमने प्रतिमा के यानी जिनबिंब के दर्शन किए तो हमने भक्ति की, तब तक नमस्कार भी हमारा सच्चा नहीं है। अभी इतनी सभी बातें हैं वो भक्ति का मार्ग है, और बाह्य भक्ति टाल बजाओ ये सब करो और भक्ति हो गई वो बस उससे कल्याण, ये ऐसी बात नहीं होती। ख्याल में आई ना?
और जो आप भक्ति की बात कर रहे हैं वो राग भाव है, और राग से तो धर्म नहीं होगा, बंद होगा। लेकिन ये जो निश्चय भक्ति की बात कर रहे हैं, यानी अपने स्वरूप का अनुभव करना, इसी को निश्चय भक्ति का। ख्याल में? तो कहते हैं वो जो श्रीमद जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो भक्ति का क्या अर्थ है ये हम बराबर नहीं समझ रहे, तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन तैयार होता है।
हाँ, तो कहते पर्याय मां छे वस्तु मां नथी, कहीं वहां चाले छे, अने पर्याय मां छे ए तो लक्ष्य ने रुचि तो अनादिनी छे। पर्याय मां है उसके तो उसी का लक्ष्य चल रहा है, हवे तारे करवू छे शू, ए तो ओला कहे ए सुनगढ़ वाला आम करे छे, ए तो पर्याय ने अशुद्धता मानता नथी। भगवान सांभळ तो खरो भाई, पर्याय मां आ बधु छे, न होय तो पछी आमां नथी एम क्यांथी आव्यो हूं? क्या कहा? पर्याय में नहीं होते तो उसमें नहीं है कहने की जरूरत क्या थी? ख्याल में आती ना बात? आमा छे आमा नथी, पर्याय में है स्वभाव में नहीं, बस इतनी बात। आमा हो तो पछी तो एकमेक तत्व थी गयो, ये तो यानी उस स्वभाव में भी हो जाए तो पूरा मिलकर एक, तो फिर पर्याय कहने की जरूरत क्या है जुदी? और स्वभाव और पर्याय से दो नाम क्यों होते फिर? रागादिनो अंश के प्रकृति ना संबंध नो विकार वस्तु में हो तो आ बे तो रह्यू नहीं, पण एमा होय छे नु वस्तु छे आखी चिदानंद घन आनंद कंद, एक समय नो विकृत भाव उभो करेलो छे, यानी वो पर्याय छे खरो, उसका निषेध नहीं, छे खरो ए आमा नथी। इतनी सरल बात है, लोगों को लगते उड़ा दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना समय हो गया, व्यवहार नयनो विषय, व्यवहार नयनो विषय पर्याय छे खरी, वेदांतनी पेठे नथी ए काई नथी के काई नथी ए भ्रम छे। वेदांत मानते पर्याय ही नहीं है, उसकी वैसी बात नहीं हो रही, पर्याय है उसकी वो स्वीकार है, उसमें ये इतने वेरिएशंस है सब कुछ है, पर स्वभाव में वो नहीं है। भ्रमणापन छे के नहीं समझाए छे, वेदांत एम कहे छे के एम नथी, आ तत्व वितरागनु कहेलू बीजू छे। वेदांत वाला तो कहे कि एकलो सर्वव्यापक आत्मा शुद्ध 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 बधु शुद्ध एम नथी, एने अज्ञान मां एके तत्व नी खबर नथी। यहाँ तो बाकी सभी बहिर तत्व स्वीकार किए हैं, वो स्वभाव में नहीं ऐसा कहे। आवी वात सांभळे एटले जाणे, वेदांत नी वात आवे तो आवी अपना मां पण वात छे एवी ए कहे छे। बीजामा धूलमय नथी, यानी कोई कहते वेदांत और हम सभी वहाँ पर भी आत्मा को शुद्ध बुद्ध का, हमारा भी ऐसा नहीं है, वहाँ तो एकांत चलता है। अब यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो।
नमो सीताण नमो आयरियाण नमो वैख्याण।